नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर हैं। वे कल शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उनके पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री रामगुलाम का ये दौरा मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद हो रहा है, जब दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत के दौरान सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी, खासकर डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए क्षेत्रों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में एक करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत की महासागर दृष्टि और नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए अहम है। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री मोदी आज शाम उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के सांनंद विधानसभा क्षेत्र में 66 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास का वायदा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सांनंद के हर गांव में 2029 तक जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और वनीकरण सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर दुमका रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के 177 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 3,169 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आवागमन में सुधार होगा। मंत्रिमंडल ने बिहार के बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत मोकामा मुंगेर खंड के 4 लेन के निर्माण को भी मंजूरी दी। नेपाल में युवाओं के प्रतिनिधियों ने एक समूह ने काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कई युवा इस निर्णय का विरोध करने लगे। इधर बिहार में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल सीमा पार लोगों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं। इस बीच नेपाली अधिकारियों के अनुरोध पर नेपाल के जनकपुर और भारत के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच आज लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV की तकनीक के हस्तांतरण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के वैश्विक बाजार में भागीदारी बढ़ाना है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये समझौता देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की दिशा में बड़ा मील का पत्थर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को कोलकाता के मैदान इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने की अनुमति दे दी है। हाल ही में कोलकाता में पूर्वी कमान के सैन्य कर्मियों द्वारा मैदान इलाके से तृणमूल कांग्रेस के एक अस्थायी मंच को हटाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना पर कथित रूप से कुछ टिप्पणियां की थी। इसमें बताया गया है कि सेना ने ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस द्वारा मंच हटाने की बार बार की गई अपीलों को अनसुना करने और कोलकाता पुलिस द्वारा कोई कदम न जाने के बाद की। मैदान इलाका भारतीय सेना के नियंत्रण में है और इसका एक बड़ा भूभाग रक्षा मंत्रालय का है। बाद में सेना के अधिकारियों ने यह मंच हटा दिया था। न्यायालय ने धरना की अनुमति देते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्रतिबंधों में ये भी शर्त है कि कोई भी भाजपा नेता इसमें शामिल नहीं हो सकता और कोलकाता पुलिस को प्रदर्शन में भाग लेने वालों के नाम उपलब्ध कराने होंगे। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हराया। 58 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने केवल 4 ओवर और 3 गेंद में मात्र 1 विकेट खोकर आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।